جملہ اس دوسرے خطبے کا، وہاں مولا فرماتے ہیں کہ تمام جو باتیں میں کر رہا ہوں ان پر توجہ کرو، واپس اسی زمانے کی طرف نہ جاؤ کہ جب گمراہی کا زمانہ تھا اور جب شکوک و شبہات کا زمانہ تھا، خاص طور پہ یہ وقت کہ جو میری ظاہری حکومت کا وقت ہے، الان اذ رجع الحق الى اہلہ ونقل الى منتقلہ، اب اس وقت کہ جب حق واپس لوٹ آیا ہے اپنے اہل کی طرف، یعنی میری طرف، رسول اللہ کے بعد حکومت مجھے نہیں دی گئی، لیکن اب اس وقت کہ جب میں تم سے مخاطب ہوں، یہ وہ وقت ہے کہ جب حق اس کے اہل کی طرف واپس آ چکا ہے، رجوع کر چکا ہے، وَنُقِلَ إِلَى مُنْتَقَلِ، اور وہ مقام کہ جہاں حق کو منتقل کیا جانا چاہیے تھا، جہاں حق کو ہونا چاہیے تھا، اب یہ حق کے خلافت اور حکومت وہاں پر پہنچ چکا ہے۔ اب جب اتنی بڑی نعمت ایک دفعہ پھر تمہیں اللہ نے عطا کی ہے، تو اب اس کی قدر کو جانو، اس کی اہمیت کو پہچانو، اور دوبارہ جاہلوں والی حرکات اور ان کی روش کی طرف نہ جاؤ۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ جو تیسرا خطبہ ہے، معروف خطبہ ہے، خطبہ شقشقیہ، لیکن اس کو ہم ابھی بعض وجوہات کی بنا پر نہیں پڑھیں گے، انشاءاللہ خدا نے توفیق دی تو ہم واپس آئیں گے اور تفصیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے، لیکن آج جو اگلا خطبہ ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، خطبہ نمبر 4 ہے۔ وَمِن خُطْبَةٍ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامِ وَهِيَ مِن أَفْصَحِ كَلَامِهِ عَلَيْهِ السَّلَامِ، مولا کے خطبات میں سے ایک یہ خطبہ ہے، اور یہ مولا کے فصیح ترین کلام کی ایک مثال ہے۔ وَفِيهَا يَعِذُ النَّاسِ، اس خطبے میں مولا لوگوں کو واعظ اور نصیحت فرما رہے ہیں۔ وَيَهْدِيهِم مِّن ضَلَالَتِهِم، اور وہ لوگ کے جو گمراہی کی طرف جا رہے ہیں، گمراہ ہو چکے ہیں، اور یہ مراد جو یہ خطاب ہے اس خطبے کا، وہ اہل بصرہ سے ہے۔ اہل بصرہ کہ جن کے پاس جمل کا لشکر، آپ کو معلوم ہے، میں پس منظر کی تھوڑی سی مختصر تکرار کر دوں کہ خلیفہ ثالث کے قتل کے بعد لوگوں نے گویا کہ یلغار کر دی مولا پر، اور کہنے لگے اور مطالبہ کرنے لگے کہ خلیفہ ہم نے آپ ہی کو بنانا۔ مولا نے فرمایا کہ اب اللہ کی طرف سے حجت مجھ پر تمام ہے، اور اللہ نے کیونکہ عالم سے عہد لیا ہے کہ جب حالات میسر ہو جائیں اور سازگار ہو جائیں، تو پھر اس نے امور کی زمام کو اپنے ہاتھ میں لینا ہے، یہ عالم سے اللہ نے عہد لیا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا اور تم خود اب میرے پاس نہ آئے ہوتے، تو میں یہ خلافت کی اونٹنی کی لگام اسی کے اوپر ڈال دیتا کہ اس نے جہاں جانا ہے وہاں پر چلی جائے، اور فرمایا کہ تم پر حکومت کرنا، لوگ حکومت کا لالچ کرتے ہیں، اقتدار کا لالچ کرتے ہیں، مولا نے ان کو فرمایا کہ تم پر حکومت کرنا اس کی قیمت علی کے پاس، علی کے نزدیک اتنی ہے جتنی جب بکری چھینک مارتی ہے تو اس کے ناک سے پانی نکل کر باہر گرتا ہے، اس جتنی حیثیت بھی اس حکومت کی علی کے لیے نہیں ہے، مگر اس کو قبول کر رہا ہوں اس لیے کہ اللہ نے علماء سے عہد لیا کہ جب لوگ آ جائیں ان کے پاس، تو پھر وہ پوری امانت داری کے ساتھ اور اپنے علم کی روشنی میں لوگوں کے امور کو، معاشرے کے امور کو، حکومت کی لگام کو اپنے ہاتھ میں لے لے۔ تو لوگوں نے مولا کی بیعت کی، کہ اس بیعت کے بارے میں بھی کیا کیفیت تھی، اسی نہج البلاغہ میں تذکرہ ہے۔ لیکن مولا کی بیعت کے بعد جب اس جن جن چیزوں میں تحریف ہو چکی تھی، اور گویا کہ صراط مستقیم سے، رسول اللہ کی روش اور سنت سے معاشرہ ہٹ چکا تھا، اس کو بحال کرنے کے لیے اور واپس لانے کے لیے مولا کائنات نے جب اقدام شروع کیے، تو بہت سارے لوگ کے جو دنیا کی امیدیں لگا کر بیٹھے تھے، جیسے ہوتا ہے نا کہ اگر کوئی مثلا کوئی طاقتور آدمی معاشرے کا، کوئی باحیثیت آدمی معاشرے کا किसी इलेक्शन में खड़े होने वाले को सपोर्ट करता है, तो जब वो इलेक्शन में जीत जाता है तो फिर वो कहता है कि मैंने तुम्हें सपोर्ट किया था, अब उस सपोर्ट की कीमत भी मुझे अदा कर। तो बाज़ अफराद कि जिन्होंने मौला की बैत की, असहाब रसूल में से थे, वो आए और उन्होंने मौला कायनात से मुतालबा किया कि अब जबकि आप खलीफा बन चुके हैं, आपको पता है कि पहले जो आपसे पहले खिलाफत का दौर था हम पर बड़ा सितम वाला रवैया रखा गया, और अब आप खलीफा बने हैं तो हम असहाब रसूल हैं, रसूलुल्लाह के करीबी हैं, तो आप हमें भी बाज़ शहरों का गवर्नर और अमीर बनाइए। तो मौला कायनात ने जवाब में फरमाया कि मैं जिसको मुनासिब समझूंगा और इलाही और अल्लाह के और कुरान और सुन्नत के मेयार के मुताबिक जो मुझे समझ में आएगा कि किसको अमीर बनाना है उसको अमीर बनाऊंगा, मुझे सोचने का वक्त दो। लेकिन मौला के जवाब से ये हजरात समझ गए कि यहाँ से कुछ मिलने वाला नहीं है, और ये बहुत मुश्किल होता है एक ऐसे शख्स के लिए जिसका मुआशरे में बहुत बड़ा मकाम हो, उसको कुछ ना दिया जाए। सियासत का तकाजा क्या होता है कि वो अफराद के जिनके बात लोग सुनते हैं, जिनकी मुआशरे में हैसियत है, उनको कुछ ना कुछ ले दे करके अपने साथ मिला लिया जाए। और मौला के बाद इकदाम ऐसे थे कि जिन इकदाम के सबब अपने आप को समझदार समझने वाले उस ज़माने में मदीना में कहा करते थे कि अली समझदार नहीं, अली को सियासत नहीं आती। एक शख्स आया मौला कायनात के पास, और ये बड़े बड़े अफराद थे, ये छोटे अफराद नहीं थे, और जाहिर है कि जब मौला के पास आते होंगे और उनको मशवरा देते होंगे और मुतालबा करते होंगे और मौला उनका मशवरा नहीं मानते या उनका मुतालबा नहीं मानते तो बाहर जाकर हतमन बात करते होंगे, अली ने ये किया और अली ये कर रहा। तो बाज़ लोगों ने आकर जो अपने आप को मोतबर समझते थे मौला कायनात से कहा कि मसलहत इसमें है कि आप अमीर शाम को अभी न छेड़ें, वो बहुत ताकतवर है, उसकी जड़ें शाम में बहुत मजबूत है, उसका लश्कर भी बहुत मजबूत है, और शामी कौम सिर्फ उसी को जानती है, वो शामियों से जो कहेगा शामियों ने वही करना है, ये लोग अभी आपकी बैत नहीं करेंगे, आप मुआविया को ना हटाएं, अमीर शाम को उसके ओहदे से ना हटाएं। लेकिन मौला ने क्या फरमाया, एक लम्हा भी मैं उसको बर्दाश्त, शाम की मसनद पर एक लम्हा भी अमीर शाम को बर्दाश्त नहीं करूँगा। ये मशवरा देने वाले बाहर आके कहते हैं कि अली को सियासत नहीं आती, थोड़ी देर के लिए रहने दो, बाद में जिस तरह कुछ लोगों ने नबासा रसूल को बाद में जहर दिलवा दिया, पहले मुआहदा कर लिया बाद में जहर दिलवा दिया, और जब इमाम हसन मुज्तबा की शहादत की खबर शाम पहुंचती है तो अमीर शाम तारीख में ये जुमले सब्त है, सही तारीख में ये जुमले सब्त, अमीर शाम के मुंह से क्या जुमला निकलता है कि हसन तो एक अंगारा था जिसे अल्लाह ने बुझा दिया, आग भड़काने वाला अंगारा था जिसको अल्लाह ने बुझा दिया, जहर दिलवाया गया। एक टेक्निकल स्टाइल ये होता है कि खराबी खुद करो और खाते में अल्लाह के डाल दो। दो किस्म की कैटेगरी के लोग होते हैं, जो ज़रा छोटी कैटेगरी के लोग होते हैं वो कहते हैं काम खराबी खुद करते हैं और फिर कहते हैं अल्लाह शैतान पे लानत करे हमें गुमराह कर दे, अपनी मर्जी से करते हैं, शैतान को कोई ताकत नहीं दी गई, कुरान कहता है शैतान सिर्फ रहनुमाई करता है कि इधर भी देख लो यहाँ भी ये मज़ेदार चीज़ पड़ी हुई, बाकी काम इंसान ने खुद कर रहा होता है, ज़बरदस्ती शैतान नहीं कर सकता। तो एक कैटेगरी एक ग्रुप ऐसे अफराद का होता है, एक ग्रुप उन अफराद का है कि जो ज़रा हाई लेवल का, बड़े से बड़ा घपला करने के बाद कहते हैं अल्लाह की मर्जी यही थी, बनू मैया की तरफ से प्रोपेगेंडा किया गया। आज भी उम्मत इस्लाम में एक ग्रुप है जो जबर के कायल, तो जो करता है अल्लाह करता है। जैसे आज हम खुद करप्शन करते हैं, हम खुद झूठे हैं, हम खुद बेईमान हैं, हम खुद नाच गाने की महफिलें सजाते भी हैं, जाते भी हैं, उन पे पैसा भी लगाते हैं, हम भी, हमारे दोस्त भी बैठकर हम पता नहीं क्या क्या हरकतें करते हैं, ठीक है। और जब फिर किसी दीनी महफिल में, किसी बहस मुबाहसे की संजीदा महफिल में बैठते हैं तो कहते हैं कि ये जो कुछ हमारे साथ हो रहा है ये कौन करवा रहा है, ये मसलन अमरीका करवा रहा है। मैं बेईमानी करता हूँ, अपनी मर्जी से करता हूँ, डोनाल्ड ट्रंप थोड़ी मुझे कहता है कि तू बेईमानी कर वरना तुझे पकड़ लेंगे, ड्रोन मार देंगे, तो मिसाइल मार देंगे, तो खुद बेईमान। तो दूसरे पर डालना, इसका जो हाईएस्ट लेवल है, इसका जो नुक्ता है कमाल है, वो ये कि घपला खुद करो और कहो अल्लाह की मर्जी यही। और एक तबका ऐसा उम्मत इस्लामी में आज भी पाया जाता है। ये बात शुरू, ये नजरिया शुरू कहां से हुआ, ये बनू उमैया के जमाने से शुरू किया गया। बनू उमैया के सिक्कों पर बिके हुए उलमा ने क्या किया, बनू मैया ने कहा कि हम तो उनके जब हुक्मरान जब आए, उल्टी सीधी हरकतें की, फिस्क व फुजूर अंजाम दिए, शराब नोशी आम हो गई। उमरा, उमरा अरबी का उमरा से मुराद के अमीर की जमा, अमीर यानी गवर्नर हुक्मरान, इनका फिस्क व फुजूर आम हो गया। अब जो सर उठाता था तो ये जर खरीद उलमा नुमा अफराद खुतबा ये क्या कहते थे, अल्लाह की मर्जी के बगैर पत्ता हिल सकता है? अवाम कहते थे नहीं हिल सकते, कहते तो फिर बनु मैया को तख्त पर बिठाने वाला अल्लाह, तो तुम लोग अल्लाह की मर्जी के खिलाफ सर उठाते हो। यजीद को तख्त पर बिठाने वाला अल्लाह है, इमाम हुसैन अल्लाह की मर्जी पर राजी नहीं, अल्लाह की मर्जी के खिलाफ सर उठा रहे। यजीद अगर शराब पिए और फिस्क को फजूर करे, वहां नहीं कहते थे कि अल्लाह की मर्जी के खिलाफ कर रहा है। चालाकी देखिए, तो ये सबसे खतरनाक कैटेगरी है कि खराबी खुद करो और किसके खाते में डालो, अल्लाह ने करवा। तो मैंने कहा कि एक अर्ज किया कि एक तबका उम्मत इस्लाम में आज भी, जिसको जबर वाले कहते हैं, जो करवा रहा कौन करवा रहा, अल्लाह करवा रहा। इमाम हुसैन को अल्लाह अगर चाहता तो कोई इमाम हुसैन को मार सकता था? नहीं, जाहिर में तो यही कहना पड़ेगा। तो बस फिर अल्लाह ने चाहा है कि इमाम हुसैन, यजीद तो मजबूर है, शिमर तो बेचारा है, इब्न ज़ियाद बेचारा है, अल्लाह की मर्जी यही थी। तो जो आगे गैर संजीदा दीन को ना समझने वाली अवाम, वो सुबहान अल्लाह करके उस जमाने में भी नारे मार के चले जाते थे कि जो हुआ ठीक। मस्जिद नबवी में मौला कायनात की तौहीन की जाती थी, जुम्मे के खुतबात में नमाजों के बाद बुरा भला बुरे अल्फाज से याद किया जाता था अमीरुल मोमिनीन को, सामने पब्लिक कहती थी सुबहान। शुक्र है कि उम्मत इस्लाम, नाउज़ बिल्ला मिन ज़ालिक, कहते थे शुक्र है कि अली के शर से अल्लाह ने उम्मत को बचा लिया, ये प्रोपेगेंडा था। जिसने दीन को और रूह दीन को दकीक नहीं समझा और फिर समझ के लोगों को नहीं देखा, मौला खुद मौला कायनात क्या फरमाते, ला युअरफुल हक बिर्रिजाल, लोगों के जरिए हक नहीं पहचाना जाता। जनाब मैंने तो फलान शख्स को पीर मान लिया, अब जिधर जाएंगे उधर मैं जाऊंगा, जन्नत में ले जाए तो भी जाऊंगा, जहन्नम में ले जाएंगे तो भी जाऊंगा, ये अंधा है। फरमाया ला युअरफुल हक बिर्रिजाल, हक लोगों से नहीं पहचाना जाता, एरफुल हक तअरफु अहला, पहले हक को पहचानो और फिर जब तुम ऊपर नजर उठाओगे फिर अहले हक तुम्हें नजर आ जाएंगे। वो खसूसियात जो हक वालों में होती हैं, पहले उन खसूसियात को जानो। जिसने दीन को गैर संजीदा इधर उधर से सुन के लिया हुआ, जो जबरदस्त खतीब आएगा इसको मजा आएगा, कहेगा वाह वाह आज तक ऐसी बातें नहीं सुनी, पता ही नहीं है कि हक होता क्या। इसी प्रोपेगेंडे की जद में आकर वो अहले बैत, आपको पता है कुतुब बिरादरान अहले सुन्नत में हुब अहले बैत को जुज्व ईमान करार दिया गया, आज बाज उलमा के मसलन कहते भी हैं, लेकिन ये हदीसें कहां गई उस जमाने में। बनू उमैया की प्रोपेगेंडा मशीनरी इतनी तेज थी कि वो जैसे आज हम दुश्मनान अहले बैत में लानत करते हैं, और मसलन अगर खतीब लानत करे तो पब्लिक बैठी हुई कहती है बेशुमार, ये हरकत अहले बैत अथार के बारे में की जाती है। इन वाकयात में से एक वाकया ये मिलता है कि एक शख्स, एक आलिम, आलिम नुमा यानी उस माहौल का परवरदा, उसकी आदत थी, उसने खुद पे लाजिम किया हुआ था कि नमाज के बाद हतमन जिस जगह बैठा होता था वहीं बैठकर अली और औलाद अली को सब करता था, लान करता था, नऊज़ बिल्लाह। एक दफा उसने जल्दी में नमाज पढ़ी तो उसको भूल गया और सफर कर रहा था कई किलोमीटर, मसलन बहुत सारा फासला तय कर गया, उसे याद आया कि मैंने तो लान नहीं किया वहां पर, सारा फासला तय करके वापस आया वो बदनसीब और बदबख्त, वहां पर उसी जगह पर वापस आया, वहां पर मौला की शान में गुस्ताखी की उसने अपनी नमाज की ताकीबात के तौर पर, और फिर दोबारा अपना सफर उसने शुरू किया। इस कदर माहौल को इन नजिस और पलीद लोगों ने खराब कर दिया था अहले बैत अथार के बारे में। कहते क्या थे, अल्लाह ने इनको तख्त पे बिठाया, अल्लाह ने इमाम हुसैन को कत्ल करवाया, शहीद करवाया। ये जो बात है ना कि अल्लाह की मर्जी है, ये हक है, लेकिन अल्लाह कहता है, अल्लाह मसलन खुदा बंदे आलम ने नबी क्यों भेजे, खुदा क्या चाहता है, नबी भेजने से खुदा क्या चाहता है, कुरान के नाजिल करने से खुदा की मर्जी क्या है। या मसलन कुरान कहता है युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र वला युरीदु बिकुमुल उस्र, अल्लाह तुम्हारे लिए आसानियां चाहता है, अल्लाह तुम्हारे लिए मुश्किलात नहीं चाहता। ये अल्लाह की कौन सी मर्जी है, अल्लाह चाहता है कि तुम उसकी इबादत करो, लोग नहीं करते, समझने वाली बात है। खुदाबंद आलम की मर्जी से क्या मुराद है, आया खुदाबंद आलम की मर्जी इंसान के इख्तियार को छीन लेती है उससे, वो चाहे तो छीन सकता, लेकिन जो उसकी मर्जी है कि मैं तब राजी होऊंगा बंदे से कि बंदा मेरी इबादत करे, और उसके बाद अल्लाह बंदे को मजबूर कर दे तो कर ही नहीं सकता इबादत, ये तो नाउज़ बिल्ला धोखा हो गया। लेकिन जिन्होंने बस अंधी तकलीद करनी है, बस जो पीर साहब कह रहे हैं बस उसी पे वाह वाह, और अगर पीर गलत ट्रैक पे चल रहे हैं तो मुरीद खुद ब खुद जाके खाई में गिरेगा, ऐसा पीर को मान लिया हुआ, तो ऐसे अंधों की दीन निजात की गारंटी नहीं देते। ऐसे अंधों ने अहले बैत के बारे में क्या रवैया अख्तियार किया, मौला कायनात ने नहीं कॉम्प्रोमाइज किया, कहा कि एक लम्हा भी बर्दाश्त नहीं करूंगा, अगर तुमने मुझ मेरी बैत की है तो फिर तुमने अपने दरमियान मुझे बेहतर समझा, तो फिर जो जिस तरफ मैं लेके जा रहा हूं उस तरफ चलो, फिर जो मैं दीन समझ रहा हूं उसके मुताबिक चलो। और मौला वाले दीन पर चलना बहुत मुश्किल था, आपको कितने लोग ऐसे मिलेंगे कि जिनको मौला ने कहा कि आओ भाई हिसाब किताब दो, तुम फलान ओहदे पर थे पिछली खिलाफत में, आओ अपने माल का हिसाब दो। उसने अपने दोस्तों को बुलाया, मशवरा किया, अभी अली ने कॉल किया मुझे, किसी शहर का गवर्नर था एक मसला, मौला ने बुलाया कि आओ अपना मसलन ऑडिट करवाओ, कहा क्या तुमने जमा किया है, उससे पहले इस ओहदे पर बैठने से पहले तुम्हारी क्या कैफियत थी, अब तुम्हारे पास कितना माल है, और जो बैतुल माल तुम्हारे पास था क्या किया तुमने। उसने अपने दोस्तों को, करप्ट लोगों के दोस्त भी करप्ट होते, उसने बुलाया, कहा कि अली ने बुलाया, क्या कहते हो, क्या करना चाह रहे हैं। उन्होंने कहा कि अली को जानते हो, उसने क्या करना है तुम्हें बुलाकर। फिर उसने कहा कि फिर तुम क्या मशवरा देते हो, अभी भी जो मौला के नाम लेने वाले लेकिन मसला नाउज़ बिल्ला उनको हराम खाने की आदत है, उसी मौला से मुलाकात हुई जिसने सारी सख्तियां और सारे सितम और सारी जफाएं बर्दाश्त की लेकिन अल्लाह के कानून पर कॉम्प्रोमाइज नहीं की। और कहने वालों ने कहा कि अली के कत्ल का सबब ही अली का अदल है, कुतिला फिल मेहराब लिशिद्दत अदल, अली को मेहराब में कत्ल किया गया सबब शिद्दत अदालत। दोस्तों ने मशवरा दिया कि अली की तरफ ना जाओ, दूसरी जो अली की मुखालिफ पार्टी है वो तुम्हें वेलकम भी करेंगे, चार पैसे और भी देंगे, मौज मस्ती भी कराएंगे, उधर चले जाओ। उसने अपना बोरिया बिस्तर जितना बांध सकता था, उस वक्त बैंक्स तो नहीं होते थे, साथ ही होता था घोड़े गधों पर जो लाद सकता था लाद कर, बजाय मौला के पास जाने के मदीने सीधा शाम पहुंच गए और वहां वेलकम भी किया गया। जाहिर बात है कि जैसे कुरान कहता है ना कि अल्लाह तय्यब और खबीस को जुदा करता है, आजमाइश इसलिए अल्लाह डालता है ताकि जो पाक और पलीत चीजें मिक्स हो गई हैं, पाक अलग हो जाए पलीत अलग हो जाए। कुरान की आयत है, खुदा तुम्हें ऐसी हालत में छोड़ेगा ही नहीं कि पाक और पलीत लोग आपस में मिक्स होकर रहते, अलग कर देगा। खुदा की आजमाइशें पाक और पलीत नजिस और ताहिर चीजों को अलग कर देगा। चले गए करबला, जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम निकले मदीना से, बहुत से लोग साथ थे, लेकिन करबला के मैदान का जो मकाम था और वहां जो कुछ होना था, अल्लाह तबारक व तआला नाखालिस चीज को वहां पहुंचने देना ही नहीं चाहता था। लिहाजा ऐसा फिल्टर लगा कि फकत जो खालिस थे वो बच, बाकी सारे के सारे साफ हो। और वही चंद कलील तादाद इमाम के साथ बाकी रहे। अब ये मौला जो इनको समझा रहे हैं, इनको नसीहतें कर रहे हैं, इन खुतबात का जितना भी बैकग्राउंड है सारा का सारा वही जमाना है। अब इस खुतबे में मौला कायनात नसीहत कर रहे हैं लोगों को कि जो गुमराह हो चुके हैं, जो प्रोपेगेंडे की जद में आ चुके हैं, गवर्नरशिप नहीं मिली हजरत तलहा हजरत जुबैर को, गवर्नरशिप नहीं मिली और इबरत का मकाम है, बहुत बड़ा इबरत का मकाम है कि खुदा बंदे आलम तमाम हम तमाम की आकबत बिल खैर करे। आप जानते हैं हजरत जुबैर कौन है? यौम सकीफा, सकीफा वाले दिन कि जब करीबी तरीन हामी मौला कायनात के मौला के घर में आकर जमा हो गए थे मौला के पास, उन हामियों में से एक हजरत जुबैर, जब बैत हो गई थी हजरत अबू बकर की, उस वक्त कुछ लोग जो मौला के हामी थे कलील, वो आकर मौला के पास घर में जमा हो गए, उनमें से एक कौन है? हजरत जुबैर। हजरत जुबैर का एक बेटा है जिसका नाम है अब्दुल्लाह इब्न जुबैर। ये जरा बड़े तेज सियासतदान थे। मौला कायनात फरमाते हैं कि जुबैर हमेशा से हमारा साथी था, जुबैर हमेशा से हमारा करीबी था, जब तक कि उसका बेटा अब्दुल्ला जवान हुआ, बेटे ने जुबैर को हमसे दूर कर दिया। वक्त कम है लेकिन ये चीजें पस मंजर में मालूम होना जरूरी, आपको मालूम है। बहरहाल मैं बात को जहां से टूटे ना, बात का सिलसिला ना टूटे, ये दोनों हजरात मक्का चले गए। जब इन्होंने उमरे की इजाजत मांगी तो मौला ने दोबारा बुलाया और कहा फिर मेरी बैत करो, क्योंकि इन्होंने वहां पर जाकर कहा कि हमने जाहिर में बैत की थी लेकिन बैत वो होती जो दिल से हो, हमने दिल से बैत नहीं की थी। और फिर आप सितम जरीफी देखें जमाने की और मौला की मजलूमियत देखिए आप, जो लोग हजरत उस्मान के खिलाफ परचम बुलंद करने वाले थे और लोगों को पब्लिक को हजरत उस्मान के खिलाफ भड़काने वाले थे कि ये देखो बनू मैया को मुसल्लत कर दिया, फासिकों को मुसल्लत कर दिया, जालिमों को मुसल्लत कर दिया, ये भड़काने वालों में आगे आगे थे। और अगर आप मौला का किरदार देखें तो मौला कभी हजरत उस्मान को जाकर समझाते हैं ये हालात कंट्रोल कीजिए, और कभी उनको जो बगावत पर तुले हुए थे और जबरदस्ती हटाना चाहते थे खलीफा को, कभी मौला उनको समझाते हैं। इन दोनों तरफ को नसीहत कर रहे हैं अली अलैहिस्सलाम, और ये दोनों तरफ अली को क्या समझ रही है? हजरत उस्मान के हामी क्या समझ रहे हैं? हजरत उस्मान के कान में मरवान इब्ने हकम जो दामाद है हजरत उस्मान का, वो क्या कहता है? अली आते हैं नसीहत करते हैं उस्मान को, और जब चले जाते हैं तो मरवान क्या कहता है? आपको पता तो है ना अली आपको पसंद नहीं करता, अली पहले दिन से आपका मुखालिफ और दुश्मन है, ऐसा ये नसीहत नहीं कर रहा, ये किसी और चक्कर में बद एतमादी पैदा कर। और उधर से वो लोग के जो बनू मैया के मजालिम से तंग आकर, कोई मिस्र से आ रहा है, कोई कूफा से आ रहा है मदीना, कोई बसरा से आ रहा है, शिकायत लेके जमा हो गए, जो बड़े बड़े असाब थे जिनके पास ज्यादा शिकायत लेकर लोग जाते थे, उनमें से एक हजरत आयशा, हजरत आयशा के खुतबात है हजरत उस्मान के खिलाफ, तारीख में मौजूद है। शरीयत बदल दी है इन्होंने। जब लश्कर जमल आ रहा था तो हजरत अली ने दोनों हजरात से, तलहा और जुबैर से फरमाया कि तुम मुझे कह रहे हो, मुझसे मुतालबा कर रहे हो कत्ल उस्मान का, मुझे मुलव्वस समझते हो कत्ल उस्मान में, हालांकि तुम जानते हो कि मैं तुम्हें समझाता था कि ठंडे हो। इस कदर इस लोगों के जज्बात को न भड़काओ उस्मान के खिलाफ, तुम तो बात ही ये करते थे घोड़े दौड़ाने की और लश्कर चलाने की। नजुल बलागा में ये खुतबा मौजूद है मौला, और आज तुम मुझे आकर कत्ल उस्मान के बारे में मुझसे मुझे मेरा मुआवजा करने आ गए। बहरहाल जो उम्मीदें और आरजुएं थी वो चीजें नहीं मिली, ये तारीख में चीजें मौजूद हैं। और बगैर किसी ये गलत रविश अपना ली गई हमारी तरफ से भी, बदजुबानी करने वाली और बदअखलाकी करने वाली, और दूसरों को बहाना मिल गया कि हक को छुपा दिया जाए कि जनाब अगर तुम इस तरह करोगे तो फिर इनकी जुबानें तो सब पे खुल जाएंगी। गाली देना अहले बैत की सीरत है ना अहले बैत के मानने वालों की सीरत है, गाली देना बदजुबानों की सीरत है, जो भी गाली देती तौहीन करना, और इस तौहीन ने छुपा दिया हक, हक को छुपा दिया। अहले बैत का मकतब आप बयान करें, ऐसा माहौल बनाए कि दूसरे आकर बैठे, और जब मैं उनको बुला के उनको गालियां निकालना शुरू कर दूं तो फिर उन्होंने मेरी बात क्या सुनी। बहरहाल ये गए, इन्होंने हजरत आयशा से भी बात की, बीच में अमीर शाम के जासूस भी, क्योंकि वो चाहता था कि मैं मुझे आना ही ना पड़े और पहले ये लोग खुद ही अली से निमट लें, और जब अली से निमट लेंगे तो फिर वो ताकतवर था, मैं ले लूंगा खिलाफत आकर। हजरत उस्मान मुतालबा करते रहे अमीर शाम से कि हालात खराब है मेरी मदद के लिए आओ, नहीं आए। जब हजरत उस्मान कत्ल हो गए आ गए, और वारिस खून उस्मान बन गए, वो खून आलूद कमीज उठा ली, हजरत उस्मान की जो बीवी की उंगलियां कट गई थी मारने वालों के वार से वो उठा ली और उसको पब्लिक के सामने लगा दिया कि आओ देखो, और पीटना शुरू कर दिया और कहा कि बैकग्राउंड क्या है, पीछे अली है, सारे इस कत्ल के पीछे अली, और भड़का दिया उन्हें। तो बहरहाल इस सारे प्रोपेगेंडे की और साजिश की जद में आकर बिल आखिर हजरत आयशा तैयार होती हैं, और मक्का से, वो मक्का में थी, मक्का से निकलती हैं उस लश्कर को लेकर, और चूंकि वो ऊंटनी पर सवार थी लिहाजा उसको लश्कर जमल कहा गया, और उसी मुनासिबत से इस जंग को भी जंग जमल कहा गया। ये लश्कर पहले आया कहां पर, बसरा में, अलबत्ता बसरा से भी पहले, याद रखिए रास्ते में वो मशहूर वाकया पेश आया कि जिसका सही अहादीस में तज़करा कुतुब बिरादरान अहले सुन्नत में मौजूद है, जिसका कोई इनकार नहीं कर सकता, और वो क्या था, एक मकाम था जिसका नाम था हौअब, और उस हौअब के बारे में रसूलुल्लाह ने हजरत आयशा से फरमाया था कि उस दिन तुम्हारा क्या होगा, उस दिन तुम किस हाल में होगी कि जिस दिन हौअब के कुत्ते तुम पर भौंकेंगे। और उस मकाम पर यह लश्कर क्याम करता है और कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई देती है हजरत आयशा को, और वो किसी को बुलाकर सवाल करती है कि ये कौन सी जगह है, शक पड़ता है कि ये कोई मसला तो नहीं है, सवाल करती है कौन सी जगह है, वो बताने वाला बताता है कि इस जगह का नाम हौअब। तो वहां पर ये गिरिया शुरू करती है, रोना शुरू करती है, कहती है मैंने वापस जा, मैं गलत तरफ में जा रही हूं। तो लोग आ गए, उनका तो सारा का सारा प्लान ही फेल हो जाएगा, तो लश्कर तैयार हुआ है, सारा का सारा प्लान फेल हो जाएगा, हौसले पस्त हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि हम जंग करने थोड़ी जा रहे हैं, आप बुजुर्गवार हैं, आप होंगी, लोग आपकी बात सुनेंगे, तो ये मुश्किल हाल हो जाएगी, फैसला हो जाएगा, आप सुलह करवा दीजिएगा लश्कर। और बाज बयानात के मुताबिक 40 के 50 बंदे को लाया गया जिन्होंने कसम उठाई कि ये हौअब नहीं है। बहरहाल जो भी हुआ बिलाखिर हजरत आयशा दोबारा चलती, जब बसरा, मसलन बसरा में ये बसरा पर गोया के काबिज हो जाते हैं, कब्जा कर लेते हैं, तो उसके बाद बसरा के लोगों को गोया कि हजरत अली के खिलाफ कर दिया जाता है। और उस गुमराही के एतबार से, उस गुमराही के एतबार से ये मौला कायनात का कलाम है कि जो उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको भी, अहले बसरा को भी और दीगरान को भी, जितने भी लोग इस प्रोपेगेंडे की जद में आ चुके थे। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले। फरमाते हैं, बिना इहतदई तुम, हमारे जरिए तुम्हें हिदायत मिली, यानी हम अहले बैत के जरिए तुम लोगों को हिदायत मिली। फिज़लमा, अंधेरों में, अंधेरों में जहाँ निकलने का रास्ता कोई नहीं था, हमारे जरिए तुम्हें रास्ता दिखाया गया। वतसन्नम तुम दुर्वतल अलिया, और तुम के जो हर तरह से पस्तियों का शिकार थे, हमारे सबब, अल्लाह ने हमारे जरिए तुम्हें बुलंदियों के कमाल तक पहुंचा दिया। वबिना अफजर तुम अनसरार, और हमारे सबब से तुम्हारी जो अंधेरी रातें थी वो फजर में तब्दील हुई, फजर फूटी हमारे सबब तुम्हारे उन अंधेरे अंधेरी रातों में। फिर फरमाया, वो के रसम उन लम यफ़क़हिल वाइया, बहरा है वो कान कि जो नसीहत की सदा को न सुने। ये वो ताबीर है जो कुरान करीम इस्तेमाल करते हैं, कान है लेकिन सुनते नहीं, बल्कि ताबीर है, इनके कान है लेकिन सुनते नहीं, वही बात। बहरा है वो कान, यानी वैसे सुन रहा है लेकिन जिस पर नसीहत असर नहीं कर रही गोया के बहरा है, सुन रहा ही नहीं। वकैफ युराई अन्नबअत मन असम्मत हुसैहा, जिसको ऊंची आवाजें और सदाएं बहरा कर चुकी हो, उसको नर्म आवाज में नसीहत भला कैसे समझ में आई। अब यहां से मुराद क्या है कि जिसकी तवज्जो इस गलत चीखो पुकार जो की जा रही है, प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, शकूक व शुबात फैलाए जा रहे हैं, जिसको इन आवाजों ने, जिसके कानों को अपनी तरफ लगा लिया है, उसको मेरी नर्म आवाज की नसीहत भला कैसे समझ में आई। और यह बाज तशरीह करने वालों ने इसका एक और माना लिया और कहा कि जिनको कुरान की और रसूल की बातें भूल गई हैं, उनको भला मुझ अली की बात कैसे समझ में आने वाली, जिन्होंने रसूलुल्लाह की हदीसें भुला दी है, मसलन हमारे बारे में, जिनको भूल गया कि रसूलुल्लाह और अली मूसा और हारून की तरह, जिनको भूल गए वो फजाइल। आपको मालूम है आज के दिन भी सहाबा रसूल में समेत, पहले तीन खुलफा के, उनके समेत आज के दिन भी कुतुब बिरादरान अहल सुन्नत में जिस सहाबी के फजाइल सबसे ज्यादा कसरत से मौजूद है वो अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम, आज के दिन भी। मौला फरमा रहे जिनको वो भूल गया है उनको भला मेरी बात क्या समझ में आई। रुबत जनानुन लम युफारिकुल खफकान, बहुत खूबसूरत जुमला और बहुत खूबसूरत पैगाम है, नसीहत का तवज्जो फरमाइए उनके लिए भी और हर इस खुतबे को पढ़ने वाले के लिए। मौला फरमाते हैं कि इत्मीनान दे दिया गया, गोया कि अल्लाह की तरफ से मुतमईन बना दिया गया उस कल्ब को, उस दिल को, कि जिसके अंदर से अल्लाह का खौफ कभी निकलता ही नहीं। खफकान कहते हैं खौफ से कांपने को, ऐसा खौफ के जो इंसान पर नज़िश तारी कर। मौला फरमा रहे हैं कि जिस दिल की पर खौफ खुदा से हर वक्त लर्जा तारी रहता है, वो डरता रहता है मैं खुदा की नाफरमानी ना कर दूं, उसको अल्लाह उस कल्ब को इत्मीनान और सुकून अपनी तरफ से अता कर। क्या कहना चाह रहे हैं उनको कि तुम क्यों मुंतशिर हो, तुम क्यों शकूक व शुबात की जद में हो, तुम क्यों फितनों में घिर गए हो, इसलिए कि तुम्हारे दिलों के अंदर से खौफ खुदा निकल चुका है और हुब्बे दुनिया तुम्हारे दिलों में घुस चुकी। या तो तुम्हें कभी सुकून नहीं मिलने वाला वो सुकून के जो अल्लाह अपने बंदों को अता करता। मा जिल तो अंतजिर बिकुम अवाकिबल गदर, मैं बहुत अरसे से यानी शुरू से जब से मैं खलीफा बना हूं, जब से जाहिरी खिलाफत मुझे मिली है, उस वक्त से मैं इंतजार में था कि तुम मेरे साथ गदर करोगे, गद्दारी करोगे, बेवफाई करोगे, यानी तुम्हारी हरकत से, तुम्हारे अंदाज से मुझे पता था कि तुमने गदर करना है और फिर उस गदर के नतीजे भी तुमने भुगतने, अली से बेवफाई का नतीजा भी तुम, अली से गद्दारी का नतीजा भी तुमने भुगतना है। शुरू से मैं तुम्हारे बारे में इसी चीज का मुंतजर था, तुम्हारे गदर का मुंतजर था। व अतवस्समुकुम बिहलियतिल मुग्तरीन, और मुझे तुम्हारे अंदर धोखा खाए हुए लोगों की अलामतें दिखाई दे रही थी, मुझे पता चल गया था कि तुम अमी अहले शाम के प्रोपेगेंडे की जद में आ जाओगे, तुम्हारी हालत मुझे बता रही, तुम्हारा इंतशार और तुम्हारा हर बात के पीछे चल पड़ना मुझे दिखाई दे रहा था कि तुम प्रोपेगेंडे की जद में आओगे, धोखा खाओगे और तुम उस धोखे में आकर मेरे साथ गद्दारी और गद्र करोगे, देख रहा था। हत्ता सतरनी अनकुम जिलबाबुद्दीन, यहां तक के तुम्हें मैंने तुम्हारी इन बातों की से चश्मपोशी किए रखी, क्यों? इसलिए कि तुम्हारे जाहिरी तौर पर तुम लोग दीनदार लोग थे और दीनदार के बारे में अल्लाह का हुक्म है कि उसके ऐबों को जब तक छुपाया जा सकता है छुपाया जाए। इसकी इस खुतबे की शर्ह पढ़ते हुए वहां पर एक हदीस थी आपके सामने, उसका मैं जिक्र हतमन करना चाहूंगा। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, और ये इस नुक्ते को भी पल्ले से बांध लीजिएगा, हम में से अक्सर ऐसा नहीं करते, जब भी किसी का कोई ऐब पता चलता है, पता नहीं क्यों हमारी ख्वाहिश होती है कि उसके जो बाकी जानने वाले हैं उनको फौरी तौर पर इसकी इतला दी जाए, हमें जो इंफॉर्मेशन मिली है ये न्यूज़ हम जाकर ब्रेक करें और उसकी शख्सियत की ऐसी की तैसी हो, जबकि हुक्म शरीयत क्या है, ये मौला इनसे क्या कह रहे बसरा वालों से कि ये जो दीन का पर्दा था, यानी जो दीन ने पर्दा डाला है लोगों के ऐबों पर, इसकी वजह से मैं तुम्हारे मैंने ऐबों को उस पर मैंने गोया कि रोशनी नहीं डाली और मैंने छुपाए रखा, वरना मैं पहले दिन से जानता था तुमने मेरे साथ गद्दारी करनी है, तुम्हारे आसार तुम्हारी सिफात ऐसे। तो यहां पर हदीस आपकी खिदमत में अर्ज करूं छठे इमाम की, फरमाते हैं कि वो शख्स के जो अपने किसी मोमिन भाई का एक ऐब कि जिसके जाहिर होने से वो मोमिन डरता है, खौफजदा है, और अपने ऐब जाहिर होने से हर कोई खौफजदा होता है लेकिन लोगों की जबानें नहीं रुकती, और लोग भी कौन होते हैं, आप ही हम ही होते हैं। फरमाया कि वो शख्स के जो किसी अपने मोमिन भाई का एक ऐब के जिसके इफ्शा होने से वो डरता है कि मेरा ये ऐब किसी को पता ना चले, जो किसी का एक ऐब छुपा लेता है, अल्लाह तबारक व तआला उस एक ऐब की सतर पोशी की वजह से क़यामत के दिन इसके जिसने छुपाया था एक ऐब, अल्लाह अहले मैशर से उसके 70 ऐबों को छुपा लेगा ताकि वो रुस्वा ना हो। और बरक्स भी हुआ कि जिन्होंने जिनको मजे आते थे लोगों के ऐब और लोगों की मुसीबतें और लोगों की परेशानियां डिस्कस करके मजे लेते थे, क़यामत के दिन उनकी बाकी सजाओं के साथ साथ एक सजा ये होगी कि तमाम अहले मैशर के सामने उनके ऐब अल्लाह खोल के रखेगा ताकि उनकी नजरों में रुस्वा हो। और अहले मैशर में जहां अल्लाह की बदतरीन मखलूक भी खड़ी होगी, वहां पर रसूलुल्लाह भी होंगे, वहां पर अहले बैत भी होंगे, उनके सामने अल्लाह तबारक व तआला इसको कि जो मोमिनों के ऐब अपने आस पास वालों के ऐब डिस्कस करके उन्हें रुस्वा करता था, अल्लाह तबारक व ताला एक एडिशनल सजा के तौर पर उनके सामने इसे रुसवा करेगा। जैसे मुतकब्बिरीन के बारे में जो अकड़ते हैं, जिनमें अकड़ और तकब्बुर होता है, उनके बारे में अहदीस में बताया गया कि जो अकड़ते थे दुनिया में, जिनमें तकब्बुर था, उनको अल्लाह तबारक व ताला चींटियों की शक्ल में, छोटे छोटे रींगने वाले कीड़ों की शक्ल में लाएगा और उनको उस रास्ते पर रख दिया जाएगा जिस रास्ते से अहले महशर ने गुजरना हो। जो जो अपना हिसाब करा के गुजर रहे होंगे, इनको कुचल कर गुजरेंगे और आखिर में इनका अल्लाह हिसाब लेगा और ये एडिशनल सजा होगी दुनिया में तकब्बुर कि सब अहले महशर इन्हें कुचल कर गुजरे, ताकि इन्हें पता चले कि मुतकब्बिर सिर्फ अल्लाह की जात, अजीजुल जब्बारुल मुतकब्बिर। हदीस कुदसी में एक है, जो तकब्बुर करता है, अपने आप को बड़ा समझता है, वो असल में मेरी चादर पहनना चाहता है, अल्लाह की रिदा के बारे में उससे झगड़ा करता है कि ये तकब्बुर की रिदा जो सिर्फ मेरे ऊपर है, ये वो कहता है मैंने भी पहन ली, मैं भी तकब्बुर रखता हूं, मैं भी बड़ा हूं। सलवात पढ़िए मुहम्मद वाले।